माहिरा ने कुछ नहीं कहा, बस हल्का सा सिर हिलाकर वहां से चली गई। असल में उसके दिल में अभी भी रेहान के लिए जगह थी। वो उसी के साथ निकाह करना चाहती थी और यही वजह थी कि वो अरमान और रिदा का रिश्ता जल्दी पक्का नहीं होने देना चाहती थी। उसे लग रहा था कि रेहान और सादिया रिश्ते में जो दूरियां आई हैं वो उसी का फायदा उठा सकती है। उसकी खामोशी के पीछे एक अलग ही खेल चल रहा था। रेहान के आदमी खलील के आने से इकबान और उसकी बीवी सुल्ताना बेगम दोनों ही अंदर घबराए हुए थे। उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि उनका नया किराएदार दरअसल रेहान का भेजा हुआ आदमी है। उन्हें तो बस इतना लगा था कि उनके किराएदार ने लालच में आकर किसी अजनबी को कमरा दे दिया है, लेकिन सच्चाई इससे कहीं ज्यादा खतरनाक थी। उन्होंने उसे आदमी को एक मामूली गुंडा समझा था। पूरा दिन ऊपर वाले कमरे से वो आदमी खलील उनके घर पर नजर रखता रहता था। उसकी खामोश निगाहें सुल्ताना बेगम को बेचैन कर देती थीं। आखिरकार सुल्ताना बेगम ने अपनी किराएदारनी को घर बुलाया। बात करना अब जरूरी हो गया था। हमारे आधे घर पर तो तुम लोग पहले ही कब्जा कर चुके हो, कम से कम बाकी आधे में तो हमें सुकून से रहने दो, सुल्ताना बेगम ने तबे गुस्से में कहा। हमने क्या किया है? किराएदारनी ने उल्टा सवाल किया, जैसे उसे कुछ पता ही ना हो। उसी वक्त ऊपर वाले कमरे की खिड़की में खलील आकर खड़ा हो गया। उसकी नज़र सीधी सुल्ताना बेगम पर टिक गई। ऊपर से पूरा आंगन साफ दिखता था, यहां तक कि हर बात की आवाज भी साफ सुनाई देती थी। सुल्ताना बेगम ने एक नज़र ऊपर डाली और उनकी बेचैनी और बढ़ गई। जुबान तो वैसे ही बहुत चलती है तुम्हारी, उन्होंने तीखे लहजे में कहा, और ये जो हट्टा कट्टा गुंडा अपने घर में रखा हुआ है ना, जो हर वक्त हमारे घर में झांकता रहता है। उन्होंने इशारे से ऊपर खड़े खलील की तरफ दिखाया। किराएदारनी हंस पड़ी, जैसे बात को हल्का बना रही हो। तुम उसी की बात कर रही हो, उसने बेपरवाही से कहा। अरे वो तो बस किराएदार है, तुम्हें क्या दिक्कत है? लेकिन उसकी आंखों में जो चमक थी वो साफ बता रही थी कि बात उतनी सीधी नहीं है। नहीं तो क्या, हम लोग बाल बच्चों वाले हैं, ऐसे आदमी को थोड़ी अपने घर में रख सकते हैं, सुल्ताना बेगम ने खुद को समझाते हुए कहा, लेकिन उनकी आवाज में बेचैनी साफ थी। वो हर वक्त हमारे आंगन में ही देखता रहता है, ये कोई ठीक बात है क्या? अरे वो बेचारा कहाँ देखता है, किराएदारनी ने लापरवाही से कहा। जरूरतमंद है, गरीब आदमी है, हमने तरस खाकर जगह दे दी, दो दिन में खुद ही चला जाएगा, फिर उसने हल्की मुस्कान के साथ कहा। मुझे तो लगता है वो भेंगा है, देखता कहीं और है, नजर कहीं और जाती है। सुल्ताना बेगम ने शक भरी नजर से उसे देखा। या फिर, किराएदारनी ने जानबूझकर बात अधूरी छोड़ी, तुम्हें लगता है कि वो तुम्हारी नूर को देख रहा है? नूर का नाम सुनते ही सुल्ताना बेगम का चेहरा सख्त हो गया। अच्छा, उन्होंने धीमे मगर ठंडे लहजे में कहा, तो अब वो भेंगा भी हो गया, गरीब भी और बेचारा भी। अरे सच कह रही हूँ, किराएदारनी ने तुरंत सफाई दी, मैंने कोई किराया विराया नहीं लिया, वो तो हमें मस्जिद के बाहर रोता हुआ मिला था, दिल पसीज गया तो घर ले आए, एक दो दिन की बात है, चला जाएगा। उसकी बातें सुनकर सुल्ताना बेगम कुछ पल के लिए सोच में पड़ गईं। शायद वो ज्यादा सोच रही थीं, या फिर सच में कुछ गड़बड़ थी। अच्छा पक्का चला जाएगा ना, उन्होंने फिर भी तसल्ली के लिए पूछा। हाँ बिल्कुल, किराएदारनी ने कहा। सुल्ताना बेगम ने गहरी सांस ली, लेकिन उनका दिल अब भी पूरी तरह मुतमईन नहीं था। ठीक है, उन्होंने सख्ती से कहा, उसे साफ साफ समझा देना, हमारे घर की तरफ ना देखा करे, हमारे घर में जवान बेटी है। ऊपर खिड़की में खड़ा खलील अब भी सब सुन रहा था। और तुम्हारी बेटी के पीछे तो दिल्ली मुंबई तक से लड़के आते हैं, उसका क्या? किराएदारनी ने तंज कसते हुए कहा। उन्हें तो तुम बड़े शौक से अच्छे अच्छे खाने बनाकर खिलाती हो, तब कुछ नहीं लगता। सुल्ताना बेगम का चेहरा तमतमा उठा और वो बेचारा ऊपर की तरफ इशारा किया, छत पर थोड़ा सा हवा खाने के आ जाता है, तुम उसके पीछे ही पड़ गई हो। बस बहुत हो गया, सुल्ताना बेगम का सब्र टूट गया। अपना मुंह बंद रखो, ज्यादा दिमाग खराब करने की जरूरत नहीं है। किराएदारनी की आंखों में अब खुली हुई बदतमीजी थी, वो जानबूझकर नूर पर वार कर रही थी ताकि सुल्ताना बेगम को नीचा दिखा सके। हमें सब पता है, उसने होंठ टेढ़े करते हुए कहा, कोई ऐसे ही उसके पीछे नहीं आता, पता नहीं तुम्हारी नूर वहां जाकर क्या क्या गुल खिला कर आई है। देख कर बात करो, सुल्ताना बेगम गुस्से से कांप उठी, वरना मुंह तोड़ दूंगी तुम्हारा। ओहो, किराएदारनी हंस पड़ी, पहले अपने घर के दरवाजे बंद रखो अपनी बेटी के आशिकों से, वरना आज नहीं तो कल वो दरवाजे तोड़कर अंदर आ जाएंगे। इतने में अंदर से नूर गुस्से में बाहर आ गई। हमारी मर्जी, उसने तेज आवाज में कहा, हम जिसे चाहे खाना खिलाएं, जिसे चाहे बाहर करें, तुम्हें इससे क्या? तुम तो मुझसे बात ही मत करो, किराएदारनी ने उसे घूरते हुए कहा। मैं तुम्हें क्या समझती थी और तुम क्या निकली? वो एक एक शब्द चुभ हो रही थी, शहर में क्या गुल खिलाकर आई हो, पहले बाप का सर झुकवाया, अब माँ को जलील करवा रही हो। ये सुनते ही माहौल चमसा गया। सुल्ताना बेगम की आंखों में खून उतर आया और नूर की मुठ्ठियां कस गईं। नीचे जो हंगामा मचा हुआ था उसकी आवाज पूरे घर में गूंज रही थी और उसी वक्त छत पर खड़ा वो आदमी अब भी नीचे झांक रहा था, बिल्कुल चुप मगर हर चीज पर नजर रखे हुए। सुल्ताना बेगम की नजर जैसे ही उस पर पड़ी उनका गुस्सा और बढ़ गया। उन्होंने तेज आवाज में कहा, अभी भी खड़े खड़े क्या देख रहे हो, निकल जाओ हमारे घर से। उनकी आवाज में गुस्सा भी था और बेचैनी भी। फिर किराएदार ने शक भरी नजरों से उनकी तरफ देखा। हो सकता है नूर ने ही इसे कोई इशारा किया हो, तभी तो ये हर वक्त ऊपर खड़ा देखता रहता है। ऐसे थोड़ी कोई किसी की तरफ देखेगा। अपनी बेटी को संभाल कर रखो, इसके कारनामे पूरा शहर जानता है। उनके इल्जाम अब हद पार करने लगे थे। अपनी बेटी को संभालो, दिल्ली मुंबई से लोग तुम्हारे घर आ रहे हैं, हमने तो इसे छत पर ही देखा है। उनकी बातों में शक, गुस्सा और समाज का डर सब मिल चुका था। किराएदार ने कुछ बोल पाती उससे पहले ही नूर आगे बढ़ी। उसने बिना कुछ कहे उसका हाथ पकड़ा और दरवाजे की तरफ ले जाने लगी। चलिए आप यहां से। उसकी आवाज सख्त थी मगर उसमें बेमतलब की बहस से बचने की समझ भी थी। किराएदारनी भी अब कुछ घबराई हुई थी। वो बिना ज्यादा विरोध किए बाहर निकल गई। सुल्ताना बेगम वहीं खड़ी रह गई, अब भी गुस्से में मगर अंदर से हिली हुई। नूर ने दरवाजा जोर से बंद किया और गहरी सांस लेकर पलटी। अम्मी आप उनके मुंह क्यों लगती हैं, उसने थोड़ा नरम होते हुए कहा। इनका तो काम ही है तमाशा करना। वो अपनी अम्मी के पास गई, उन्हें धीरे से पकड़कर चारपाई पर बैठाया। सुल्ताना बेगम का चेहरा उतर चुका था, गुस्से की जगह अब थकान और डरने ले ली थी। आप बैठिए मैं पानी लाती हूँ, नूर ने कहा और जल्दी से रसोई की तरफ चली गई। कमरे में अब सन्नाटा था, बस सुल्ताना बेगम की भारी सांसें सुनाई दे रही थी। वो जैसे अंदर से कांप रही थी, जो कुछ हुआ था उसने उन्हें हिला दिया था। उधर छत पर खड़ा वो आदमी अब भी वहीं था, बिल्कुल उसी जगह। उसकी नजर अब भी नीचे ही टिकी हुई थी, जैसे वो सिर्फ देख नहीं रहा बल्कि हर बात को समझ भी रहा हो, या शायद कुछ और सोच रहा हो। और नीचे इस घर के अंदर बेचैनी अब भी पूरी तरह खत्म नहीं हुई थी। रेहाना बेगम ने सादिया को फोन किया था। असल में जब से रेहान और सादिया दोनों गए थे, रेहाना बेगम की रेहान से बात ही नहीं हुई थी। फोन की घंटी बजते ही सादिया ने कॉल उठा ली। उसकी आवाज सामान्य थी, जैसे सब कुछ ठीक चल रहा हो। अस्सलाम वालेकुम ताई अम्मी, उसने धीरे से कहा। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हो, रेहाना बेगम ने पूछा, मगर उनके लहजे में सीधा सवाल छुपा हुआ था। मैं ठीक हूँ, सादिया ने छोटा सा जवाब दिया। और रेहान, उन्होंने तुरंत अगला सवाल किया। सादिया एक पल को रुकी, फिर बिल्कुल वही जवाब दिया जो हर बार देती थी।
प्लीज मेरी सीरीज पर कमेंट करें, साथ में रेटिंग। सीधे आपको मेरी सीरीज कैसी लग रही है कमेंट में बताएं।